हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पिछले अध्याय में आपने देखा कि आकांक्षा, जो खुराना परिवार की बहू बनने का सपना देख रही थी, रणविजय को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वो झलक को नीचा दिखाने की भी कोशिश करती है। हालांकि सिद्धार्थ के आने पर आकांक्षा को झटका लगता है जब वो झलक को सबके सामने पेश करता है। झलक की सुंदरता और आकर्षकता देखकर रणविजय और आकांक्षा दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। आकांक्षा को नैना और ईशान ने शांत करने की कोशिश की। दूसरी तरफ रायचंद परिवार में आर्यन ने पार्टी में जाने और सिद्धार्थ का सामना करने का फैसला किया, जबकि झलक दादी के साथ अपनी भावनाएं साझा करती है। अब अगला, कहीं ना कहीं दादी पूरी तरह से झलक को प्यार और स्नेह से संभालना चाहती थीं। झलक के चेहरे पर मायूसी देख वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। अब दादी की बात सुनकर झलक की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर दादी को एक बार फिर गले से लगा लिया और बोली, दादी आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत स्वीट हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ दादी मेरी बात सुनिए, प्लीज़ दादी। ये बोलते हुए झलक की आंखें नम हो गईं। पहली बार इस तरह झलक की आंखों में आंसू देख दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत बोली, क्या बात है मेरी बच्ची, मैं तेरी आंखों में आंसू तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हुआ क्या मेरी बेटी, जवाब दो, क्या सिद्धार्थ ने कुछ कहा है तुमसे? देखो, अगर सिद्धार्थ से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसे इस बार नहीं छोड़ूंगी, बोलो ना मेरी बच्ची। ये बोलकर दादी पूरी कोशिश कर रही थी कि झलक को फूल की तरह संभाल लें। तब धीरे धीरे झलक ने हर सांस ली और अपने मन की बातें दादी के सामने रख दीं। उसने कहा कि वो यहाँ इतने बड़े परिवारों के बीच नहीं रहना चाहती और अपनी सुकून भरी जिंदगी गांव में जाकर बिताना चाहती है। वो नहीं चाहती कि दादी सबके सामने उसे अपनी धर्मपोती घोषित करें। जैसे ही झलक ने अपने मन की बात दादी के सामने रखी, दादी की आंखें भारी हो उठीं। उन्हें काफी हद तक दुख का एहसास होने लगा। वहीं सिद्धार्थ, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था और अपने सभी गेस्ट से मिल रहा था, बार बार बीच बीच में झलक के चेहरे के एक्सप्रेशन को अच्छी तरह देख रहा था। अब जैसे ही उसने ये देखा कि दादी की आंखों में आंसू हैं, सिद्धार्थ ने अपने गुस्से से हाथों की मुठियाँ कस ली थीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि झलक इस तरह से दादी के सामने बात करेगी। इस वक्त उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। अब तो वो तुरंत गुस्से से भरकर दादी और झलक के सामने आकर खड़ा हो गया था और झलक को घूरते हुए बोला, क्या बकवास की है तूने मेरी दादी के साथ, बोल, जवाब दे मुझे। अगर आज तेरी वजह से मेरी दादी का फंक्शन खराब हुआ तो मैं यहीं सबके सामने तुझे गोली मार दूंगा। अब जैसे ही झलक ने उसकी ये तड़पती भटकती हुई आवाज़ सुनी, एक पल के लिए दादी और झलक दोनों ही डर गईं। लेकिन तभी दादी ने थोड़ा गुस्से से सिद्धार्थ को देखकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी पोती के बारे में बात करने की? बेटा, मैंने तुम्हें दिल से अपना माना है। मैं तो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करना चाहती थी जो पूरे समाज के सामने करनी थी। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हें अपने धर्म पोते के रूप में अपनाऊं तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, तुमसे मेरा रिश्ता दिल से है, मैं तुम्हें दिल से अपना बच्चा मानती हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन बेटा मैं तुम्हें इस तरह से भला जाने की इजाज़त कैसे दे सकती हूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे अलग मत करो बेटा। जैसे ही दादी ने ये भावुक शब्द बोले, एक पल के लिए दादी का इतना प्यार पाकर झलक की आंखें एक बार फिर भर उठीं। लेकिन ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आने लगे। उसका फ़ोन बजने लगा। मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा। दादी की बातें सुनकर झलक ने धीरे से कहा, दादी प्लीज़, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करती हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस वक्त मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे अपने परिवार को संभालना है। मेरे पिता भले ही ठीक हो गए हों, लेकिन उनमें अब भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर सकें। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं आपसे एक वादा करती हूँ, जब भी आपका दिल करेगा आप मुझसे मिलने आ सकती हैं, और जब भी मैं शहर आऊँगी मैं खुद आपसे मिलने आऊँगी। लेकिन दादी प्लीज़, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अभी ना तो मैं शादी कर सकती हूँ और ना ही आपके परिवार का हिस्सा बन सकती हूँ। प्लीज़ दादी, आप इतनी स्वार्थी मत बनिए कि सिर्फ अपने प्यार के लिए मुझे यहाँ रोके रखें। देखिए दादी, मैं एक बहुत मामूली लड़की हूँ, मैं आप जैसे बड़े परिवारों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन आपको मेरी भी बात सुननी होगी दादी, आपको मेरी भी मजबूरी समझनी होगी। अब जैसे ही झलक ने इस तरह से दादी को आईना दिखाने की कोशिश की, दादी का चेहरा जाने क्यों फीका पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं झलक जो कह रही थी वो बिल्कुल सही थी। झलक में दादी को ना सिर्फ अपना बचपन नजर आता था, बल्कि एक प्यारी सी दोस्त भी दिखती थी, जिसके साथ दादी हंसती थी, बातें करती थी, गार्डन में घूमती थी, साथ गोल्फ खेलती थी, साथ मिलकर खाना बनाती थी। झलक ने दादी को वो एहसास दिलाया था जो उन्होंने सालों से खो दिया था, बचपन का, अपनापन का। यही कारण था कि अपने स्वार्थवश दादी उसे अपनी धर्मपोती बनाकर हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन अब झलक की बातें सुनकर दादी को अचानक एक सच्चाई का एहसास हुआ कि किसी के जीवन पर अपना हक नहीं जताया जा सकता। अगर झलक को शादी नहीं करनी है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, ये उसकी जिंदगी है, और अगर वो अपने माता पिता और छोटे भाई के लिए कुछ करना चाहती है तो ये उसका हक है। तभी दादी ने आगे बढ़कर झलक के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं जानती हूँ कि कुछ समय के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, मेरी पोती हो और हमेशा रहोगी, तुम जब चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हें अपने पास स्वार्थ के प्यार में बांधकर नहीं रखूंगी। अब जैसे ही दादी ने ये कहा, झलक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, वो तुरंत दादी के पास गई और उन्हें कसकर गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर वैभव बेसब्री से अब उसे देखने का इंतजार कर रहा था। जब दादी स्टेज पर जाकर झलक को सबके सामने अपनी पोती के रूप में इंट्रोड्यूस कराएगी, इस वक्त झलक पर सभी की नजरें थीं। वहीं आकांक्षा, जो दादी को झलक के गले से लगते देख रही थी और उनका इतना प्यार महसूस कर रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो चाहकर भी पार्टी में अपना असली गुस्सा किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मीडिया की नजरें हर किसी पर घूम रही थीं। इसीलिए उसे मजबूरी में अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखनी पड़ी। अब धीरे धीरे केक का समय आ गया। रणविजय डिसेंट बनकर दादी के पास खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं रणविजय बस यही उम्मीद कर रहा था कि दादी अब झलक और रणविजय की इंगेजमेंट सबके सामने घोषित कर दें। अगर समाज की नज़रों में ये इंगेजमेंट एक बार घोषित हो जाती तो झलक हमेशा के लिए रणविजय की हो जाती और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। इतने बड़े और अमीर परिवारों में एक बार सगाई या इंगेजमेंट जैसी प्रतिबद्धता तय हो जाए तो उसे तोड़ना लगभग असंभव होता है, क्योंकि इससे परिवार की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं इस वक्त रणविजय के दिमाग में बस यही कहानी चल रही थी। देर न करते हुए वो प्यार से झलक के पास गया और दादी के सामने खड़ा हो गया। वो बस इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि कब दादी उसकी इंगेजमेंट घोषित करें। उसके लिए इससे बड़ी खुशी का कोई पल और नहीं हो सकता था। रणविजय चाहता था कि झलक दादी के माध्यम से हमेशा के लिए उसकी बन जाए, और वो अच्छी तरह जानता था कि उसे इसे पाने के लिए क्या करना है।
जैसे जैसे देर बढ़ रही थी, दादी का दिल हल्का फुल्का हो गया और उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से बड़ा सा केक आयोजित किया। धीरे धीरे आर्यन और धीरज रॉयचंद्रा मीरा पार्टी में आ चुके थे। झलक ने जैसे ही आर्यन को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधे जाकर उन्हें गले से लगा लिया। ये देखकर रणविजय और सिद्धार्थ दोनों कहीं हतप्रभ रह गए। साथ ही सिद्धार्थ सोचने लगा कि इस लड़की में इतनी हिम्मत है कि मेरी आंखों के सामने किसी से खुलकर मिल रही है। वो सोच रहा था कि उसे पहले ही समझाया गया था कि झलक आर्यन से दूर रहे, लेकिन शायद इस लड़की को जल्दी ये बात समझ नहीं आई। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन फिलहाल धीरज जी को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम झलक ने आर्यन और मीरा से आकर मुलाकात की, वरना उन्हें लगता था कि जिस तरह सिद्धार्थ व्यवहार कर रहा था उससे ये लगने लगा था कि झलक और आर्यन के बीच शायद कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन अब झलक ने आकर आर्यन और मीरा से मुलाकात की तो उन्हें थोड़ी राहत और सुकून महसूस हुआ।